श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हमने प्रभु यीशु को और कलीसिया को वर और वधु के रूप में चित्रित होते हुए देखा है। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 और 8 से देखेंगे और इसमें वधु का चित्रण किया गया है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज हम फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के दबाव और परेशानियों में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सहायता करें ताकि वे भी अपने जीवन में आपकी आशीषों को ग्रहण कर सकें। इस समय हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से अध्याय 7 से आरंभ करते हैं। अध्याय 7 के पहले 9 पदों में वर वधु में अपने आनंद का उल्लेख करता है, जो सुंदर उपमाओं में व्यक्त किया गया है। हेरी ए आयरन साइट कहते हैं, यह जानना एक आश्चर्यजनक बात है कि प्रभु यीशु अपनों से कहीं अधिक प्रसन्न है। जितना हम उससे प्रसन्न हैं, उससे भी कहीं अधिक। एक दिन निश्चय ही हम उसमें परिपूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। एक दिन वह हमारे लिए सब कुछ होगा। परंतु जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, उसके लिए हमारी सराहना से कहीं अधिक वह हमें सराहता है। वधु जब वर के प्रेम की अभिव्यक्ति सुनती है तो उसके मन में आश्वासन उत्पन्न हो जाता है, उसमें पुनरुद्वार और संगति का बोध जागृत होता है। हम देखते हैं कि वधु का संतोष, वह कहती है कि उसे अपने वर के लिए जो कहना है वह बस यह है। तो आइए हम पढ़ें श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। ध्यान दीजिए, हमने 2 बार देखा है कि वधु कहती है मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, परंतु ए मूडी स्टुअर्ट कहते हैं कि यह अत्यधिक परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। यद्यपि यह मसीह यीशु के मन की लालसा का विचार है, परंतु यह एक अनमोल बात प्रकट करता है और वह है कि विश्वासी उसके प्रति प्रभु यीशु की मनोकामना की गहराई को समझता है। स्टुअर्ट कहते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे प्रति अपने विचारों को जानता हूं, बुराई नहीं भलाई के विचारों को। प्रभु अपने विचारों को जानता है, परंतु जिसके लिए प्रभु सोचता है वह प्रभु के विचारों को नहीं जानता और संदेह करता है, वरन अविश्वास में रहता है। धन्य है वे जो उसको प्रतिक्रिया दिखा पाए कि वे परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। हम उसकी हार्दिक मनोकामना के लक्ष्य हैं। यह कैसा महान अनुग्रह है। मेरे प्रिय, हम आगे देखते हैं जो सगा भाई के बारे बातें करता है। हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। ध्यान दीजिए, मेरे भाई के समान, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिलाया। सगा भाई, प्रभु यीशु हमारा ऐसा ही सगा भाई बन गया है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, हमारी देह के समान देह और हमारी हड्डी के समान हड्डी। आगे हम देखते हैं, तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। बहुत से विश्वासी प्रभु यीशु से प्रेम करने का सार्वजनिक अंगीकार नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि आप उससे प्रेम करते हैं। यदि आपका जीवन प्रकट करता है कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो सुनने वाले आपके अंगीकार के कारण आपकी निंदा नहीं करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 8 अध्याय के 2 पद में, मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती, और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। यहां पर हम देखते हैं, मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। स्टुअर्ट ने उचित ही कहा है, हमारा उत्तरदायित्व है कि अपनी क्षमता में सर्वोत्तम मसीह को दें, उसके लिए कोई कमी न होने दें, उसके लिए सब कुछ एकत्र करें, उसे सब कुछ दे दें जो सर्वोत्तम और मनपसंद है। परंतु इन शब्दों का वास्तविक संदर्भ मेमने के विवाह से है, जब उसकी दुल्हन अपने को उसके लिए तैयार करेगी, जब मसीह यीशु अपने पिता के राज्य में उसके साथ नया दाखरस पिएगा। आइए हम आगे देखेंगे, प्रेम की विश्वास करने योग्य दुर्बलता। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए है, जंगल से चली आती है, सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, वहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी। अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए, विश्वासी के जीवन का अंतिम चरण है उसकी दुर्बलता, उसकी निर्भरता, उसका प्रेम। युवावस्था में जब हम पर उसका झंडा जो फहराता था वह प्रेम था, जब हम उकाबों की नाय उड़ते थे। ये सारी बातें हम यशाया की पुस्तक 40 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं, जवानी में हम दौड़ते हुए थकते नहीं थे, जबकि हम प्रभु की अर्थात प्रभु को यरूशलेम की सड़कों पर दुखी देख रहे थे, परंतु अपनी वृद्धावस्था में हम उस पर बच्चे की नाई निर्भर होने के लिए बाध्य होते हैं, और जब हम मसीह पर अपनी पूर्ण निर्भरता का बोध पाते हैं और उसकी बात की सत्यता की उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तब वह हमारी सेवा का भरपूर उपयोग करता है। मेरे प्रियो, हम श्रेष्ठ गीत के पुस्तक 8 अध्याय उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। मृत्यु अपने संपूर्ण आतंक के साथ खोए हुए मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की कीमत है, परंतु वह टला नहीं। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसने क्रूस सहन किया और लज्जा की परवाह न की, और मृत्यु हजारों बार मेमने की दुल्हन के सामने आई, परंतु उसने स्वयं से प्रेम नहीं किया, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में और रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 38 और 39 पद में लिखा है, न मृत्यु न जीवन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। कब्र जो आपको पूरा निगल जाती है, वह दया नहीं जानती। स्टुअर्ट कहते हैं कि एलिया जिसने परमेश्वर के लिए ऐसी जलन रखी कि किद्रोन के नाले पर उसने बाल के पुजारियों का घात किया, एक को भी बचने नहीं दिया, उसे भी निर्दयी कब्र ने ही निर्दयता के साथ प्रेरित किया था। पौलुस को भी ईर्ष्या ने ही प्रेरित किया था कि वह पवित्र श्राप दे। यदि कोई प्रभु यीशु से प्रेम न करे तो वह मृत है। कब्र के समान ईर्ष्या ही के कारण हमारे पुरखाओं ने जो विद्रोह करते थे, कष्ट उठाते थे, हमसे अधिक ज्ञान रखते थे, और इसके ही कारण उनमें विवेकी साहस की साथ प्रभु यीशु के लिए उत्साह से भरा प्रेम उभरा, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह के मान सम्मान के समक्ष उन्होंने न तो अपने जीवन को कुछ समझा और न अन्यों को। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है। इससे हमें प्रभु यीशु के दमकते प्रेम का स्मरण होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। स्टुअर्ट कहते हैं, अपने पिता के दाहिने ओर जाते समय उसने अपने शिष्यों के मन में भी वही दिव्य अग्नि जलाई जो उसके मन में थी। उन पर आग की जीभों के समान पवित्र आत्मा उतरा और उनमें उस प्रत्यक्ष अग्नि की तुलना में जो उनके सिरों पर दिखाई दी, प्रेम की अग्नि और अधिक दमकने लगी। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम में या प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। ओह, हमने कितनी बार उसे निराश किया, परंतु हमारी बार बार की चूक से भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ, नहीं वह हमारे पापों में डूबकर नष्ट हुआ। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति भी प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। परमेश्वर हमारा पैसा और हमारी सेवा नहीं चाहता है, वह हमारा प्रेम चाहता है। यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते तो वह हमारी मसीही सेवा के कार्य और भेंटे तुच्छ जानता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। छोटी बहन श्रेष्ठ गीत के 8 अध्याय और उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे, उस दिन हम उसके लिए क्या करें। ध्यान दीजिए, कुछ बाइबल शिक्षकों के अनुसार छोटी बहन अन्य जाति कलीसिया का प्रतीक है। हम उसके लिए क्या करें, यह आरंभिक कलीसिया में एक कष्टदायक प्रश्न था। प्रेरितों के काम अध्याय 15 में यरूशलेम की सभा का उल्लेख है, जिसमें यहूदी विश्वासियों और अन्य जाति विश्वासियों में उपस्थित मतभेद पर विचार किया गया था। मतभेद यह था, क्या अन्य जाति विश्वासी भी मूसा की व्यवस्था का पालन करें। जिस दिन हमारी बहन की विवाह की बात लगे, क्या आप उसे चाहेंगे। उसे कोई नहीं चाहेगा। अन्य जातियां बहिष्कृत थी, परंतु एक दिन उस महान वर ने उसका हाथ थामा, अर्थात मांगा। मेरे मित्रों, उसने हमें हमारे आकर्षण के कारण नहीं चुना, परंतु उसने हमारी खोई हुई दशा देखी और हमसे प्रेम किया। अब क्योंकि छोटी बहन मसीह यीशु के द्वारा स्वीकार की गई है, तो वह अपनी बड़ी बहन से कैसा व्यवहार पाएगी? श्रेष्ठ गीत 8:9 में लिखा है, यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, क्योंकि परमेश्वर अन्य जाति को भी स्वीकार कर रहा था। वे भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जा रहे थे। इसे हम इफिसियों की पत्री 2:22 में पाते हैं। यहूदी कलीसिया के सामने एक प्रश्न था, उन पर क्या निर्णय किया जाए? खतना, परंपराएं, विभिन्न संस्कार और आदेश, वह जुआ जो न तो यहूदी पुरखे और न उनकी संतान उठा पाई थी। याकूब ने बड़ी बहन की भावनाओं को व्यक्त किया, जिसे हम प्रेरितों के काम 15:19 में पाते हैं। मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें। अतः सभा ने स्वीकार किया कि अन्य जाति से आने वाले विश्वासियों को मूसा की व्यवस्था का दास न बनाया जाए, उन्हें स्वीकार करके मसीह के विश्वास में विकसित किया जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत 8:10 में, मैं शहरपनाह थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट, तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले के समान थी। यह छोटी बहन का आनंद है। जब अन्य जाति विश्वासियों ने सभा का निर्णय सुना तो वे अति आनंदित हुए। प्रेरितों के काम 15:31 में हम इसे पाते हैं। परमेश्वर के मंदिर में दीवार स्वरूप स्वीकार किए जाने के कारण वे अति आनंदित थे। इफिसियों की पत्री 2:19-22 में पौलुस लिखता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक मंदिर को बनाती है और बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मेरी छातियां उसके गुम्मट। यह छोटी बहन अर्थात अन्य जाति कलीसिया ने शीघ्र ही अनेक पुत्र पुत्रियों को परमेश्वर के वचन रूपी दूध से पोषित किया। अन्य जाति कलीसिया शीघ्रता से बढ़ती और अपनी बहन से अर्थात बड़ी बहन से अधिक सुंदर और सम्मानित हुई है। छोटी बहन के इस उपमा में एक सुसमाचारीय संदेश है। हमें यह समझना है कि छोटी बहन आज की सब जातियों का प्रतीक है। आज संसार में अनेक जन वर की पुकार पर प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी वाणी नहीं सुनी है। रोमियो की पत्री 10:14 में पौलुस कहता है, प्रचारक बिना कैसे सुने? जी हाँ, यह सच है। आगे हम देखते हैं दाख की बारी किराए पर। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 8:11 में लिखा है, बलहामोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी, उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी, हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000-1000 टुकड़े देने थे। सुलेमान की एक दाख की बारी थी। सुलेमान मसीह का प्रतीक है। वधु यहूदियों और अन्य जातियों की संगठित कलीसिया का प्रतीक है। वह दाख की बारी की कहानी सुनाती है। पहले तो वह उसके वास्तविक स्वामी के अधिकार में थी, अर्थात इसराइल के अधिकार में। बाद में वह अपनी देखभाल स्वयं करने के लिए छोड़ दी गई थी। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 33 से 46 पद में देखते हैं। एक स्वामी ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा तथा उसमें रसकुंड खुदवाया और एक गुम्मट भी बनवाया। अब उसे दूर देश जाना था तो उसने उसे किराएदार को दे दिया। फसल आने पर उसने अपने दासों को भेजा कि फल प्राप्त करें, परंतु किराएदारों ने उन्हें मारा पीटा और अंत में उसने अपने ही पुत्र को भेजा। किराएदारों ने आपस में सम्मति की कि यदि वे दाख की बारी के वारिस को ही मार डालें तो सब कुछ उनका अपना हो जाएगा। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। अब उस दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन्हें दंड देगा और अपनी दाख की बारी पर दूसरे किराएदार को रखेगा। हम श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, मेरे निज दाख की बारी मेरे ही लिए है, हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। फल के रखवालों को 200 मिले, उन्हें मजदूरी मिलना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हे सुलेमान, 1000 तुझी को। अपने पूर्वज से विपरीत वह कहती है कि संपूर्ण लाभ प्रभु का होगा, परंतु वह उसे अपनी निज संपदा के समान संभालती है। मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है। इतिहास में स्पष्ट है कि आरंभिक कलीसिया ने दाख की बारी को ऐसे ही संभाला था, परंतु आज बड़े दुख की बात है कि कलीसिया की निष्ठा में अंतर आ गया है। ओह, आप और मैं मसीह की दुल्हन के सदस्य निष्ठापूर्वक दिए गए दाख की बारी के भाग की निष्ठापूर्वक देखभाल करें तो कितना अच्छा होगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारे या जवान हरिन के समान बन जा। दुल्हन दाख की बारी के स्वामी से कह रही है, लौट आ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह अंतिम बात कहती है 22 अध्याय के 20 पद में, हे प्रभु यीशु, आ। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते, उसे जानते नहीं, तो उसका नाम नहीं फैलाते, तो आप हृदय से नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु आ। क्या आप कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु आ? मैं चाहता हूं कि तू आ जाए। पौलुस ने कहा कि उसके आगमन की लालसा करने वालों को वह प्रतिफल देगा। उसके आगमन की लालसा का अर्थ है उससे प्रेम करना, जैसे वधु अपने प्रिय वर के आगमन की प्रतीक्षा में बेचैन रहती है। हम इस महान गीत के अंत में हर्बर्ट की सुक्तियां सुने। कहता है, हे प्रभु आ, मेरा सिर दुखता है, मन रोता है, जबकि तू सदा सदा तक रुके। तेरा विलंब मुझे जीवतों में रखे है, मेरी आत्मा दिन रात तड़पती है। ओह, मुझ पर प्रकट हो या मुझे उठा ले। तथापि यदि तू कहे, मैं क्यों रुकूं? मेरे प्रभु, यह संसार मेरे लिए क्या है? हाय, मरा संसार है, बादलों हट जाओ, दूर हो, मुझे देखना है। ओह, प्रकट हो या मुझे उठा ले। करनी की चर्चा करते हैं, परंतु कुछ नहीं है। हम अपना अन्न और भूसा पीछे छोड़ दें। फल का समय नहीं है, परंतु वह जो लाता है अंतिम परंतु प्रिय, यद्यपि दिन भयानक है। ओह, प्रकट हो या मुझे उठा ले। मेरे मित्रों, यह क्या है सुंदर विचार है जो आज आपके लिए और मेरे लिए है, कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम कितना तैयार हैं। क्या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु जल्द आए और मुझे और आपको ले जाए, या आप इस संसार में अभी भी तैयार नहीं हैं? मैं आपके जीवन को नहीं जानता, लेकिन इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के द्वारा हमने इस बात को सीख लिया है, हमने जान लिया है कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्यार करता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने मन और विचारों को टटोलें, देखें और इस गंभीरता को समझने का यत्न करें, ताकि हम इस बात को स्वीकार करें कि परमेश्वर मुझसे, आपसे, हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, ताकि हम सब उसके साथ में रहें। आइए आज हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं, और यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, घटियां हैं, प्रभु के सामने मान लें और कहें, प्रभु मैं इन सारी बातों से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मैं अभी तैयार नहीं हो पाया हूं, नहीं हो पाई हूं, लेकिन मैं होना चाहता हूं, चाहती हूं, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी निकटता में आने के लिए तैयार हूं। जब आप इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो निश्चय ही वह आपकी और मेरी भी सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज यहां पर श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि इस गीत के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे।
उनके हाथों में वो शस्त्र थे, अहिंसा थे, जिनके नाम थे।